प्रवचन सार, प्रवचन सदा भाग छठा, लेक्चर नंबर 475। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। सुरसुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टघातिकर्मणे प्रणमनकरो धर्मकर्ता तीर्थश्रीमहावीरने वरिशेषतीर्थङ्कर अनेश सिद्धशुद्धास्ते त्वने मुनिज्ञानदृगचारित्रतपवीया चरणसंयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वन्दुवरिहु मनुजक्षेत्रे वर्तता अरहन्तने अरहन्तने सौसिद्धने य नमस्करण करियेरिते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधुसमूहने तसुशुद्धदर्शनज्ञानमुख्यपवित्राश्रमपामिने प्राप्ति करूं स्वाम्यनि ये नाथि शिव प्राप्ति वने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये छठी पुस्तक के हम पृष्ठ संख्या 81 पर आ गए, 81 नीचे से कहो या ऊपर से, दूसरा पैराग्राफ है, यहां से हम पढ़ते हैं। कल ये बात आई थी कि आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है ऐसा जिसने जाना। किसने जाना? तो सम्य दृष्टि ने जाना, यानी अनुभव पूर्वक जाना, तो उसको कहेंगे वही जैन शासन है। यही कह रहे यहाँ पर, पंचास्ति कायमा कयूं के चारे अनुयोगनु तात्पर्य वीतराकता छे। चारों ही अनुयोगों का कथन, कथन पद्धति जिसको कहेंगे, अलग अलग है। कर्णानुयोग में तो जीवों के परिणामों की और कर्मों की सूक्ष्म बातें होगी, त्रिलोक रचना की बातें होगी। चरणानुयोग में वैसे तो है, तो वहां तो चरणानुयोग में भी पहले में पहले समय दर्शन ज्ञान की बात करके फिर उस पूर्वक जो वहां जो साथ में जो राग है और वहां कैसा आचरण होता है उसका वर्णन किया जाता है। तो ऐसा करना चाहिए वाली तो उनकी भाषा होती है। द्रव्यानुयोग में तो सिद्धांत बताए जाते हैं, प्रत्येक द्रव्य की गुण की पर्याय की स्वतंत्रता बताई जाती है। वहां तो कहेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। और चरणानुयोग कहेगा तो सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, बोलना चाहिए, उससे जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए, ये उसकी भाषा होती है। प्रथमानुयोग में तो स्टोरी है ना, वो तो कथा है जो पूर्व में हो चुके हैं तीर्थंकर आदि, तो उनके जो पहले में उनका जीवन चरित्र जिसको कहेंगे उसमें तो क्या बताते हैं, पुण्य और पाप के तो फल बताते हैं। फिर भी उन्होंने कैसे पुरुषार्थ पूर्वक मुनि अवस्था धारण करके मोक्ष प्राप्त किया उसका वर्णन आता है। परंतु सभी अनुयोगों का तात्पर्य क्या कह रहे, तो वीतराकता है ये कह रहे
आप। पूर्व में जो प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ते थे वो रीत जरा बताओ तो हम भी ऐसा करें ना।
देखो प्रथमान योग में जैसे क्या है, जैसे कोई तीर्थंकर हो गए हैं, 24 तीर्थंकरों का पुराण है, अभी जो पद्म पुराण है रामायण जिसको हम कहेंगे, तो वहाँ उन जीवों के पहले में पहले उनके जीवन की कहानी भी बताते हैं और साथ साथ में उन्होंने कैसा पुरुषया, उनको ऐसे मुनि मिले, जंगल में गए तो वहाँ मुनिराज थे, उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वहाँ सारे सिद्धांत बताएंगे। परंतु हम बचपन में तो बहुत पढ़ते थे ये सारे चरित्र वगैरह, क्या करते थे जब मुनिराज कथन करना शुरू करते हैं तो एक दो पन्ने पलट देते थे, क्योंकि स्टोरी पढ़ने का रस था ना।
तो वैसा हम भी पढ़े के नहीं पढ़े?
नहीं ना पढ़े, क्या फायदा। देखो उसमें भी आते हैं ना कि देखो पुण्य पाप के फल तो उनके भी थे, परंतु उसमें से उन्होंने किस तरह से हमें भी प्रेरणा मिलती है, केवल स्टोरी पढ़ने से नहीं मिलती है, तो उन्होंने उसमें किस तरह से पुरुषार्थ किया, तो हम भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। क्योंकि हम तो अपने को दुखी मानते रहते हैं, दुखी है ही नहीं, किससे, संयोगों से, और फिर सारा लक्ष्य संयोगों का करते हैं और फिर ये संयोग सुधरेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा मानते रहते हैं। ये कल्पना का तो मैं तो भ्रम है ना, कल्पना है ना भ्रम है, तो ये भ्रम का नाश कैसे होगा, तो सही ज्ञान होगा तो भ्रम का नाश हो जाएगा।
तो आप कह रहे हैं यहाँ प्रेरणा मिलती है, आपने यहाँ तो प्रेरणा तो गई, अश्विन भी गया।
हवे कोई एम कहे कि चरणान योग में आ रही छे अने फलाना अनुयोग में आ रही छे, ये बात आमा फेरवी नाखे, यानी उसमें उसको रूल आउट कर दिया। चरणान योग नु, करणान योग नु, द्रव्यानुयोग नु, कथानुयोग नु, कथानुयोग कहो या प्रथमानुयोग कहो, एक ही बात है, जाणपणू करीने आ पोताना द्रव्यगुण पर्यायनु त्रणनु जाणपणू करीने पण स्वद्रव्यमां आवुं एम छे, यानी वो तो जिसको कोई भी अनुयोग है वहां से तो हम सिद्धांत को समझते हैं और आत्मसन्मुखता से ही समय दर्शन होगा, कथा पढ़ते पढ़ते कहने से या तो आचरण करते करते उसका लक्ष्य करने से नहीं, लक्ष्य तो पहले पहले निर्णय सही होना चाहिए और लक्ष्य स्व का करना है ना, स्वद्रव्य में आवु एम छे, परनु जानपणु करीने स्व मां वळवु, क्योंकि स्व और पर का जानना तो मेरा स्वभाव है, तो यहाँ पर को कैसा जानना है, हम तो उसमें रस लेकर जान रहे हैं, पर को ये पर है स्व नहीं है ऐसा जानना है, और स्व को यह मैं हूं ऐसा जानना है। एना द्रव्य गुण पर्याय ना भेद ने जानी ने कई शैली, जैसे हमने पुद्गल है फिर उसमें कौन से गुण है तो गुणों की क्या क्या पर्याय होती है, इस सब हमने भेद करके जाना, क्यों, क्योंकि हमें वो कोई चीज पहचाननी है तो उसमें मैंपना जो पड़ा है, जैसे सभी आम जीवों की तो शरीर में यह मैं हूं ऐसी मान्यता है, तभी जो पुद्गल के ये स्पर्श रस गंध वर्ण है और उसके ये हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गर्म वगैरह वर्ण की जो पर्याय है रस की जो है, तो ये शरीर में तो ये सारे पाए जाते हैं, काला है गोरा है ये क्या है, वर्ण दिख रहा है, जो दिख रहा है वो क्या है, हमने बात देखी थी इंद्रियों के जो विषय है वो पुद्गल है, इसलिए यह मैं नहीं हूं, यह पुद्गल है, यह पर है, इतना तो नक्की कर सकते उससे, और यही हमारा प्रयोजन है। यहाँ लिखा है ना एना एना ने पर का द्रव्य गुण पर्याय ना भेद ने जानी ने कई शैली जो तो खरा, उसमें नहीं जानने की बात नहीं, पर जानना किस लिए जानना, वो जानकर वो पर द्रव्य है वो नक्की करना है। अभेद में आवू अने जे उपयोगे अभेद ने जान्यो, अभेद में आवू अपने अभेद अखंड आत्मा का लक्ष्य करना, उसी को जानते रहना। पहले तो क्या पर को जानना कि नहीं जानना, वो जानना क्योंकि वो पर है ये नक्की किया हमने, अब उससे हटकर अपने में स्व में लीन होना है, लीन होना का अर्थ क्या है, अभेद का लक्ष्य करना है। तो कहते अभेद में आओ अने जे उपयोगे, उपयोगे ने जिस उपयोग ने, गुजराती है ना ये, उपयोगे ने जिस उपयोग ने अभेद ने जाने ने अभेद को जाना, यानी जिस उपयोग ने अभेद को जाना ए उपयोग वितराग भाव छे, यानी वही तो जिस पर्याय ने अपने को जाना है वही पर्याय वो वितरागता वहां उत्पन्न हुई है भाषा। ए जैन शासन छे अने बधु कहेवानु प्रयोजन आ छे समझानो काई भाई। आ हा हा अहियां कहे छे के अब यहाँ की बात है वर्णादि चतुष्टयस्य अपि यानी वर्णादि चार का भी स्निग्ध गुण अभावे पुद्गल के लिए बता रहे जीव में राग के अभाव में कहेंगे और यहाँ स्निग्ध गुण के अभाव में यानी स्निग्धत्व रुक्षत्व के जो दो का डिफरेंस होता है उसके कारण बंद होता है तो कहते हैं स्निग्ध गुण के अभाव में उसका अर्थ क्या है जो परमाणु है सिंगल परमाणु तो उसमें जो एक गुण वाला है एक गुण किसको कहेंगे जघन्य जिसको कहेंगे यानी है तो उसमें अविभाग प्रतिच्छेद परंतु उसको जघन्य कहते हैं
एक गुण
कहेंगे उसमें एक विभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे तो दो गुण कहेंगे दो गुण कहने से डबल नहीं हुआ है अनंत में एक की ही वृद्धि हुई है जो मिनिमम वाला जो है मिनिमम पॉसिबल अविभाग प्रतिच्छेद उसको यहाँ जघन्य कहा उसको एक गुण कहा उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ा तो भी उसको दो गुण कहेंगे दो बढ़े तो तीन गुण कहेंगे इस तरह से यहाँ कहते वर्णादि चतुष्टयस्य अपि स्निग्ध गुण अभावे यानी वर्णादि चतुष्टय के भी स्निग्ध गुण के अभाव में ए पुद्गल मा लिधु वर्ण गंध रस स्पर्श मूल चार पाठ छे ने वर्ण रस गंध स्पर्शाह विद्यन्ते पुद्गलस्य सूक्ष्मात यानी वो स्पर्श रस गंध वर्ण कहो या वर्ण रस गंध स्पर्श है वो पाए जाते हैं या होते हैं किसमें पुद्गल में कौन से पुद्गल में तो सूक्ष्म एक परमाणु से लेकर स्थूल पृथ्वी स्कंद तक पृथ्वी स्कंद क्यों कहा क्योंकि वो स्थूल स्थूल जो स्कंद है उसको पृथ्वी स्कंद कहें क्योंकि हर एक को एक नाम उदाहरण देके समझाया जाता है इसलिए उसको पृथ्वी कह दिया। वर्णादि चतुष्टयस्य अपि वो बीच में डैश नहीं चाहिए चतुष्टयस्य अपि ऐसा वो है ना डैश निकाल देना। स्निग्ध गुण अभावे चिकासना अभावे जेम अनंत चतुष्टय वाला जीव ने रागादि ना अभावे यानी रागादि के अभाव में शुद्धात्म ध्यान थी शुद्धत्वपणु प्रकट थाई छे। जीव में क्या लिया है हर एक जीव भले वो अभवी भी क्यों न हो अनंत चतुष्टय उसका गुण कहा है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर और अनंत सुख। अभी जिसको रागादि का अभाव है ऐसे जीव के शुद्धात्म ध्यान के द्वारा शुद्धपना प्रकट होता है। वर्णादि चतुष्टयस्यापि डैश नहीं चाहिए वो एक शब्द है। स्निग्ध गुण अभावे बंधने असति असति ने नहीं होने पर यानी वर्णादि चतुष्टय के भी स्निग्ध यानी वो चिकास का अभाव है इसलिए बंधन नहीं होने से या बंधन नहीं होते हुए बंधन नहीं हुआ थी परमाणु पुद्गल अवस्थायाम शुद्धत्वम इति यानी परमाणु रूप जो पुद्गल है उसके वो शुद्धत्व पाया जाता है। अभवी के भी अनंत चतुष्टय वो गुण की बात है सामर्थ्य हाँ वो अभाव है वो तो जिसने किया उसकी बात है। अनंत चतुष्टय गुण किस में है सब में है वो गुण है वो प्रकट होते नहीं पर्याय में किसके प्रकट हो गए जिसके रागादि का अभाव हो जाता है उसके
जो भव्य है उसके
वो तो यहाँ तो सिद्ध अरिहंतों की बात भी रागादि का अभाव किसको हुआ है अरिहंतों के शुरुआत कहाँ से हुई चौथे गुण स्थान से वहां अभव्य को नहीं लेना उसके प्रकट कभी नहीं होने वाला। हाँ तो परमाणु पुद्गल अवस्था जो है उसमें शुद्धत्व है लो आहा हा हवे शू कहे छे जीवस्य नरनारादि विभाव पर्यायाहा एटले आ शरीर नहीं हो क्या कहते हैं जीव की विभाव पर्याय यानी वहां नारकी का शरीर जुदा है और नारकी जीव उसकी भी अवस्था है ना नारकी पने की उसी जीव की अवस्था है जैसे हम आप मनुष्य है तो मनुष्य शरीर जुदा है और हमारी अभी मनुष्य पर्याय चल रही है तो कहते जीवनी अरूपी विभाव पर्याय नर नारकी मनुष्य एटले आ शरीर नहीं, एक्चुअली नर का ही अर्थ होता है मनुष्य होता है, फिर भी नर नारकी इतना करके रुके है, नर नारकी अर्ध विराम देना, और मनुष्य एटले आ शरीर नहीं, यानी वो अलग वाक्य लिया उन्होंने। आ तो विभाविक जड़नी पर्याय छे, कौन सी शरीर क्या है जड़ की पर्याय, और उसको क्या कहेंगे स्कंद है तो उसको विभाव कहेंगे, परमाणु होगा तो उसका स्वभाव कहेंगे। मनुष्यपणानी योग्यतानी जे गति अंदर छे, गति कहने से मनुष्य गति जैसे भावों में भी आता है ना, गति औदयिक भाव है, और जीव का मनुष्य गति नाम की जीव की पर्याय चल रही है, और जो शरीर के साथ संबंध होकर वो असमान जाति द्रव्य पर्याय होती उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे। देखो मनुष्यपणानी योग्यतानी जे गति अंदर छे एनी विभाविक व्यंजन पर्याय छे, उसको विभाव व्यंजन पर्याय कहा। अर्थ पर्याय में गुणों की एक एक समय की जो सूक्ष्म पर्याय है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, और जो कुछ चिरकाल यानी लंबे काल तक चलेगी जैसे मनुष्य पर्याय है, नरक नारकी की है, देव की पर्याय है, उसको क्या कहेंगे व्यंजन पर्याय कहेंगे, और यह कैसी है विभाव व्यंजन पर्याय। तथा अयम शब्द पुद्गलस्य विभाव पर्यायो, यहां समझाना क्या चाहते हैं, शब्द जो है वो कोई गुण नहीं है, गुण का कार्य नहीं है, एक पहले में पहले ये समझाए कि वो पर्याय है कार्य है, क्यों पर्याय अनित्य होती है, शब्द भी अनित्य है, वो कायम नहीं रहता है, कादाचित का कहा यानी कभी कभी रहता है, इसका अर्थ क्या है वहां नित्य कोई चीज होनी चाहिए, तो नित्य क्या है तो वहां पुद्गल परमाणु वो नित्य है, पुद्गल परमाणु है तो उसके स्पर्शादि गुण भी वहां हो गए ही हो गए, पर पर्टिकुलर किसी एक गुण की कोई पर्टिकुलर पर्याय वो शब्द नहीं है। हाँ, जिन पुद्गलों से बने उनमें जो अपने अपने स्पर्श रस गंध वर्ण हो गए, यही कह रहे हैं कि ये जो शब्द है वो पुद्गल की विभाव पर्याय है। विभाव पर्याय क्यों कहा, क्योंकि वो स्कंध है, तो वहां कायम रहने वाला क्या है तो ये पुद्गल परम अनेक पुद्गल जो है ना स्कंध जो है वो कायम है, गुण नहीं अने स्वाभाविक पर्याय नहीं, एम के ऊंचे शब्द छे एक गुण नहीं अने स्वाभाविक पर्याय नहीं। आहा हा, स्वाभाविक पर्याय किसको कहेंगे, एक पुद्गल परमाणु की जो उसको स्वभाव पर्याय कहेंगे,
स्वाभाविक यानी नेचुरल।
हाँ नेचुरल पुद्गल नी विभाव पर्याय छे, लो ए अहीं कहे छे भाई जो एम तर्क करवामां आवे के, अभी ये आचार्य स्वयं ऐसा तर्क उठाते हैं जैसे किसी शिष्य ने पूछा ऐसा कहकर वो तर्क की बात बताते हैं और स्वयं उसका निराकरण करेंगे कि एम तर्क करवामां आवे के जो जो यानी यदि शब्द पुद्गलनो पर्याय होए तो पृथ्वी स्कंदनी जेम बधी इंद्रियों थी जनाए। देखो क्या कहना चाहते हैं, हमने वो स्कंदों के स्थूल स्थूल वगैरह भेद देखे थे, स्थूल स्थूल का लक्षण क्या बताया था, हाँ हाँ उसमें और एक उन्होंने जोड़ दिया क्या, वो सभी इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, यह लिखा है ना शब्द पुद्गलनो पर्याय होए तो पृथ्वी स्कंदनी जेम बधी इंद्रियों थी जनाए, जैसे उसका स्पर्श भी कोई पृथ्वी ने कोई सॉलिड चीज है उसकी बात चल तो हल्का भारी भी समझता है हमको, ठंडा गर्म है वो भी समझता है, स्पर्श की भी पर्याय समझ में आती है, उसकी कंसिस्टेंसी जिसको हम कहेंगे रूखा चिकना कड़ा नरम जो कुछ है वो भी समझ में आता है। तो क्या कहते हैं कि ये तो स्पर्श उसका वर्ण दिखता है, कोई गंध है उसको तो सभी इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, एक बात यानी ये दलील क्या कर रहा है, तर्क जो उठाने वाला कहते हैं पृथ्वी एक स्कंद है और वो सभी इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, और आप शब्द को भी स्कंद कहते हो तो वो भी सभी इंद्रियों के द्वारा जाना जाना चाहिए, ये उसने तर्क उठाया। स्पर्शनादिक इंद्रियों नो विषय होवो जोइए एम कहे छे, एनो उत्तर आपे छे के, अभी उसके लिए इस दलील का उत्तर क्या दिया, अरे पानी भी तो स्कंद है, पर पानी में तो गंध हो तो अव्यक्त है, कि उसका स्पर्श है, रस है, वर्ण है। तो कहते कि पानी ग्रहण इंद्रियों नो विषय नहीं, प्रकटपने हो एने पानी में वो अव्यक्तपने गंध है, पर वो प्रकटपने इंद्रियों का विषय नहीं है, यानी ग्रहण इंद्रिय का। अंदर पानी ना परमाणु में तो बधू छे, हमने देखा था ना, कहीं तो व्यक्त होता है कहीं अव्यक्त है, नहीं वो तो शक्ति अपेक्षा रहता है, पर परमाणु से लेकर सभी स्कंदों में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण पाए ही जाएंगे। अंदर पानी ना परमाणु में तो बधू छे, पण घ्राणेन्द्रिय थी सूंघी ने पानी जानी शके एवं नहीं। अब पानी में कुछ मिला के उसको उसका सूंघते है वो भाई नहीं ले, उसको नहीं लेना केवल पानी लेना। आप कहेंगे हम यहाँ का पानी वो समझेंगे क्योंकि उसमें क्लोरीन आता है थोड़ा, उसकी बात नहीं है। नहीं तर एने गंधनो पर्याय छे, पण स्थूल उपयोग थी गंधथी ज पानी जणाय एवुं नथी। एने कई पर्टिकुलर गंध है इसलिए ये पानी है ऐसा हम नहीं कह सकते। अब ये पानी का उदाहरण दिया। अब कहते अग्नि, अग्नि भी एक स्कंद है, दिखाई देता है ना चक्षु से तो दिखाई देता है। तो अग्नि पुद्गल पर्याय हुआ छता घ्राणेन्द्रिय, घ्राणो हुआ घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रिय नो विषय नहीं। पहला पानी नु दृष्टांत लीधु, हवे कहे छे अग्नि पुद्गल पर्याय होवा छता नाक थी जनाय नहीं, रस नो विषय नहीं। अभी इसके दोनों दो इंद्रियों का विषय नहीं। उसने दलील क्या बताई थी, पृथ्वी एक स्कंद है, आप शब्द को भी स्कंद कहते हो तो उसमें चारों इंद्रियों के द्वारा जाना जाना चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं है। अने पवन पुद्गल पर्याय होवा छता, अभी पवन भी पुद्गल पर्याय है परंतु उसे घ्राण इंद्रिय एटले नाक, रसनेन्द्रिय अने चक्षु इंद्रियनो विषय नथी। वोड़ी एम नथी के पानी गंध विनानु छे, पानी भी स्पर्श रस गंध वर्ण चारों से है, अग्नि भी और क्या बताया लास्ट में पवन भी,
वायु,
वायु भी। गंध घ्राणेन्द्रियनो विषय मां नथी तेथी गंध विनानु पानी छे एम नथी। वो तो विषय नहीं हो रहा है परंतु वहां पानी में गंध तो है, एम नथी के पानी गंध विनानु छे तेथी नाकते अग्राह्य छे। अग्नि गंध तथा रस विनानो छे तेथी नाक तथा जीभते अग्राह्य छे, ऐसा नहीं है वो कह रहे, एम नथी। क्या ने क्या वात नाखी, आहा पवन एने वायु, वायु गंध रस तथा वर्ण विनानो छे, जैसे भी पंखे की हवा आ रही है तो कौन सा वर्ण दिख रहा है आपको, वर्ण दिख रहा है ना, वो ठंडी है गर्म है जो कुछ हमको पता चल रहा है, परंतु उसमें है कि नहीं है, बाकी वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, ये कह रहे हैं। देखे थे गंध रस तथा वर्ण विनानो छे तेथी नाक जीभ तथा आंख के अग्राह्य छे एम नथी। कोई ऐसा समझे उसमें है ही नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी पुद्गल हो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सभी पाए जाते हैं, कारण के सर्व पुद्गलों, सर्व पुद्गलों में उन्हें परमाणु से लेकर स्कंद तक सब ले लिया, स्पर्शादि लो बधा पुद्गलो स्पर्शादि चतुष्क अर्थात वर्ण गंध रस ने स्पर्श आदि चतुष्क सहित स्वीकारवामां आव्या छे। ये चार मुख्य गुण लिए हैं समझाने के लिए, क्योंकि हमारे इंद्रियों के द्वारा तो वो जाने जाते हैं इसलिए उसको ही मुख्य करके बताया। हमारा प्रयोजन क्या है, पुद्गल को पहचानना और ये मैं नहीं हूं ऐसा समझना है ना, उसमें भी अनंत गुण है। आप कहेंगे अनंत क्यों नहीं कहते, ना आपको पहचानने के लिए इतना काफी है, वो प्रयोजन आपका सॉल्व हो रहा है इससे, और वो अनंत कहने वाला भी और सुनने वाला भी नहीं रहेगा वहां पर। यहाँ लिखा ना नीचे स्वीकार में आयो, मूल ग्रंथ में नीचे फुटनोट छे, चतुष्क एटले चतुष्टय, चतुष्टय करते के चार बातें, चार नो समूह, सर्व पुद्गलों मा इतले पृथ्वी पानी अग्नि अने वायु ए बधाई मा स्पर्शादी चारे चारे गुणों होय छे। देखो ये पुद्गलों के स्कंदों के कुछ भेद बताए। किसी ने हमको पहले बताया था, पूछा था वनस्पति को क्यों नहीं लेना लिया, तो वनस्पति का वो पृथ्वी में आ जाएगा, पृथ्वी स्कंद जैसा वनस्पति स्कंद। वनस्पति नाम का कोई अलग नहीं, यहाँ पृथ्वी ये चार अलग अलग टाइप है ना, पृथ्वी पानी अग्नि और वायु, उसके हर एक के कैरेक्टर्स कुछ अलग है, तो सभी स्कंद उन किसमें किसकी मुख्यता है वो बताया। अब वनस्पति ले लेंगे तो पृथ्वी स्कंद माफक हो जाएगा। पृथ्वी कहने से केवल जमीन ऐसा नहीं समझना, उसमें जो स्थूल स्कंद है उसको समझना। मात्र एटलोज फेर एटलोज छे के पृथ्वी में चारे गुणों व्यक्त छे, पानी में गंध व्यक्त छे, ए उपयोगनी अपेक्षा थी बात छे। बाकी गंध गुण छे ते पर्याय में छे, पानी में गंधनी पर्याय तो छे ने, पण एवी रीते परिणमी छे ए घ्राण थी जनाय नहीं। एम गंध तो ए पर्याय में पण छे, कारण के गंध गुण छे एनो पर्याय छे के नहीं, पण घ्राण थी जनाय ए रीते मां व्यक्त एटले प्रकट नथी। एम हा हा हा, ज्ञान ना न्याय थी अनुमान अने आगम गम्य थी एमा गंधनी पर्याय छे, गंध गुण छे तो पर्याय पण छे, क्योंकि जहाँ गुण होगा वहाँ तो पर्याय होगी ही होगी।
प्रश्न,
हाँ प्रश्न आपका।
ज्ञान में कहा जाता है कि जो शब्द है, इच्छा है,
फिर से
इट्स फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन और साउंड वेव्स। तो यहाँ पवन और शब्द में क्या अंतर, पवन और शब्द मतलब शब्द पवन की पर्याय हुई
ना, 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 ना।
या शब्द अलग ही कोई चीज है,
शब्द है वो भाषा वर्गणा से शब्द बनते, भाषा वर्गणा से शब्द बनते। पवन के आपके कोई पवन वेव्स होते क्या, पवन वेव्स होते हैं क्या,
पवन में हवा,
तो आपने साउंड वेव्स कहा, तो हवा की वेव्स होते क्या, आपका साइंस भी नहीं मान रहा है, आपकी साइंस की भाषा में मैं बोल रही हूँ।
मीडियम की
ना, ना मीडियम की कहाँ बात है,
भाषा वर्गना अलग है,
भाषा वर्गना ही अलग है, और वो तो साउंड वेव्स है, वो आप उसको नाप सकते हैं, उसका अर्थ है वो पुद्गल है, उल्टा वो सिद्ध कर रहा है ये पुद्गल है, ख्याल में ना।
हाँ
बिल्कुल, अभी उसके तो बहुत भेद है, हमने तो यहाँ तो विशेष लिए ने, तो भाषात्मक अभाषात्मक वगैरह वैश्रेषिक प्रादेशिक, कल बात आई थी इसकी। हाँ फिर वो तत्त अतत वितत घन वगैरह, उसके और भेद होते हैं। स्पर्श ज्ञान से जानते हाँ, तो अनुमान से हमने अन्य तीन गुण है ये हमने अनुमान से जाना है, स्पर्श को अनुमान से नहीं, वो तो इंद्रिय से जाना है। हाँ और ये हमें आगम से मालूम है कि जो पुद्गल है हाँ, तो उसमें अभी कर्म तो दिखता भी नहीं है, वो किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, परंतु हम आगम से जानते हैं। और अवधि ज्ञानी के तो प्रत्यक्ष है, अवधि ज्ञानी तो कर्म के एक परमाणु तक को जान सकते, सर्वावधि वाले है, अवधि ज्ञान के द्वारा परमाणु तक को जानते हैं। क्या क्या हम जो जानते हैं ना, तो उसमें अनुमान लगाते क्योंकि हमने आगम से उसका सही ज्ञान लिया, इसलिए अनुमान तो बाकी भी अरे क्या करे, कर्म ऐसा आया वैसा आया, वो तो बात बताते हैं, क्योंकि कर्म नाम सुन के रखा है और उसके बारे में कल्पनाएं ज्यादा चलती है, उसका सही अभ्यास हो वो एक भी साइंस है ना, तो क्योंकि केवली ने जाना हुआ है और वो बताया हुआ है, तो है तो वो एक, और उसका भी जो कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो जीव के साथ बनता है, फिर भी हम उसको नहीं देखते पर अनुमान लगा सकते हैं, जीव के परिणामों को देखकर कर्म के उदयवादी का अनुमान लगा सकते हैं, या कोई बहुत संक्लिष्ट परिणाम करता हो ऐसा जो करता है, हम कहते कैसे दुर्गति का बंद करता होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। पर अनुमान भी तो जिसको सही आगम ज्ञान होगा तो उस संबंध में उसका अनुमान भी सही हो सकता है, परंतु सब कुछ अनुमान से तो नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म बातें हैं और उसमें इतनी सूक्ष्मता है उसके अनुभाग के बारे में, स्थिति के बारे में, अन्य अन्य बारे में, तो हम ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकते किसने ये ऐसा इसने किया होगा ऐसा, वो तो केवल ही जाने। द्रव्यानुयोगनु ज्ञान जीणु छे, वीतरागनी आवी वात बीजे क्या छे नहीं। सूक्ष्म क्यों लिया? सूक्ष्म इसलिए लिया यहाँ पर, जीणु है सूक्ष्म क्योंकि अपने अनुभव की बात है ना उसमें से, वैसे तो है सबसे सरल, इन्हें टर्मिनोलॉजी साहब की भाषा में बोलना है तो द्रव्यानुयोग को सूक्ष्म कहते हैं, हमको सूक्ष्म चाहिए सूक्ष्म से, तो उसको कहते हैं सूक्ष्माति के
सूक्ष्म सूक्ष्म
अभी उसका ये हो गया आभास हो गया, सूक्ष्माभास बुद्धि, सूक्ष्म का आभास हो गया उसको, तुझे सूक्ष्म ही जानना है तो कर्णानुयोग पड़े ऐसा कहते, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म बातें हैं उसका अभ्यास करते करते उससे भी सूक्ष्म आत्मा की ओर चला जाता है, उसको पकड़ता है इस तरह से।
वैसा बताए तो किसी ने कर्णानुयोग पढ़ना चालू किया और फिर उसको पता लगे कि द्रव्यानुयोग
सूक्ष्म है,
क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते थक गया
तो द्रव्यानुयोग आसान लगने लगा क्या?
वो सूक्ष्म कबूल किया
तो द्रव्यानुयोग नो ज्ञान जीणु छे, देखो उसमें विशिष्ट न्याय से लॉजिक से सिद्ध किया है और बात तो वस्तु स्वरूप की है, और ये वस्तु स्वरूप सही नहीं जानेंगे जब तक ज्ञान, अब ये तो सही ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान तो तभी होगा ये सही ज्ञान करके फिर आत्मा का अनुभव करेगा स्व सन्मुख होकर तभी, पर उसके पहले ये सब जिसको हम व्यवहार नाम देते, बाद में समय दर्शन होने पर इसी ज्ञान को व्यवहार ज्ञान में चले डालेंगे, परंतु वो जब तक ठीक नहीं है तो निश्चय भी वहां नहीं होगा ठीक, यानी आगम से हम सही जान रहे हैं। हाँ। तो वीतरागनी आविवाद बीजे क्या इच्छे नहीं, बीजे ने अन्य किसी मत में संप्रदाय में अन्य कोई दर्शन जिसको कहेंगे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सर्वज्ञ सिवाय बधाए गप्पे गप मारिया छे, वो भी कहते हमारे भगवान सर्वज्ञ है, अरे वन सर्वज्ञ का है का, जहाँ वितरागता का पता नहीं वहां सर्वज्ञ कहाँ से हुए है ना, समझानो काय केम के जेना संप्रदाय मां सर्वज्ञ नथी एने सर्वज्ञ स्वभावी जीव ने खबर नथी, तो वहां आत्मा का अनुभव वगैरह जो गप मारते हैं ना, हम मोक्ष दिला देंगे और ये भक्ति का मार्ग है, ऐसा मार्ग है, वैसा मार्ग है, वो सब गप है कहते, बधाए गपे गप मारिया छे, लोगों भोले लोगों का लगता है अरे कुछ तो उसमें से ठीक होगा, उसमें से अच्छी अच्छी बातें लेना, अरे अच्छी क्या है सच्ची पहला नक्की करो ना, ये सुनने को अच्छे लगते हैं, क्या लगता है एक दूसरे को मदद करना चाहिए, सबका अच्छा प्रेम से हाँ रहना चाहिए, अच्छा लगता है सुनने को,
दूसरे की सेवा करना चाहिए,
हाँ ये तो लौकिक बातें,
जैन दर्शन में भी बता भैया वृत्त करो,
अपन भैया वृत्त वो तप में लिया है उसका सही अर्थ ही नहीं पता है ना, हाँ। जिसके अंतरंग में इतनी वितरागता है उसके बाह्य में कैसे होते हैं उसका ये वर्णन है, लोगों ने वही बाह्य क्रियाकांड को ही धर्म या उसी को तप मान के रखा है, कहते जेना संप्रदाय मां सर्वज्ञ पर्याय मां सर्वज्ञ त्रण काल त्रण लोग जाने एने जोयू अने कहूं ए बराबर छे, तो एवी जेने सर्वज्ञ पर्याय नथी, यानी सर्वज्ञ पर्याय ने केवल ज्ञान के पर्याय जिसमें नहीं है, अने कल्पना थी कहूं तो एनो सर्वज्ञ स्वभाव जीवनो छे ए पण एना मतमा नथी, वो तो कहते हमारे भगवान सर्वज्ञ है और वो अवतार लेते हैं जब यहाँ पाप बढ़ता है, तो सर्वज्ञ भगवान फिर दोबारा अवतार लेने आएंगे यहाँ पर इसे कहते सब गप्पे गप है,
क्योंकि वो ऐसा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ऐसी
निर्भवति भारत, हाँ
यानी अभी उनके राग बाकी है कि अपने शिष्यों को अपने फॉलोअर्स को हम बचा लेंगे, तो सर्वज्ञ ही नहीं है, ये बात
वो भी है और फिर दोबारा जन्म लेते वो काहे के स्वर्ग,
क्योंकि उनके कर्म बाकी है इसलिए आए वापस
सर्वज्ञ वितराग काहे के,
तो वही गपे गप बोल रहे हो,
वही तो है धर्म नु मूल सर्वज्ञ छे एम कह्यु छे ने, क्योंकि धर्म का मूल क्यों कहा, जिसको धर्म प्रकट करना है उसलिए सर्वज्ञता का कहो केवल ज्ञान का निर्णय हो जावे तो सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा को पहचाने। एक बात, धर्म का मूल सर्वज्ञ है क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने मूल उपदेश दिया है, बिना उनके उपदेश से यानी जो सर्वज्ञ से डायरेक्ट सुने या उनसे जो चला आ रहा है उपदेश, उसके उपदेश को यानी जिसको देशना कहेंगे हम, उसके बिना किसी को भी समय दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा, क्या कहा, धर्मनु मूल सर्वज्ञ छे एम कह्यू छे ने, कार्तिकेय नु प्रेक्षा मां धर्मानु प्रेक्षा लीधी छे, ये नाम सुना है बेना आपने, कार्तिकेय नु प्रेक्षा आपने नहीं सुना होगा, कार्तिकेय आचार्य हो गए, कुनकुंद आचार्य के भी बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने 12 भावना अनुप्रेक्षा जिसको कहते हैं, मुनिराज भी इसका बारंबार चिंतन करते हैं, इसे 12 प्रकार की उसमें भावना बताई है, याद है क्या कौन सी वतन अनित्य संसार अशरण वगैरह सब, ये सब 12 भावना है, तो कहते हैं उसमें धर्मानुप्रेक्षा नाम की भावना है, धर्म अनुप्रेक्षा एमा ए लीधु के धर्मनु मूल सर्वज्ञ छे एनु कारण के ए बधा पेटा भेदो भंग ने आ बधु सर्वज्ञ सिवाय बीजू कोई प्रत्यक्ष न जाने। क्या कहते हैं, किसी की भी अपेक्षा से जो भेद प्रभेद किए जाते हैं, कर्मों के हो, जीव के परिणामों के हो, जीव के आश्रय संबंधी हो, या अन्य अन्य जो बातें बताई है इतनी डिटेल में, तो कहते हैं सर्वज्ञ सिवाय दूसरा कोई भी प्रत्यक्ष नहीं जान सकता।
यहाँ जो पेटा भेद का है वो सब डिविजन्स कहेंगे,
हाँ, भेद और उत्तर भेद जिसको कहेंगे हम,
प्रभेद,
प्रभेद,
भंग यानी उसके भेद,
भंग का ये तो उसका भेद, जैसे हम कहेंगे कोई विशिष्ट स्थान है इसमें इतनी प्रकृतियां बनते या इतने भाव होते जीवों के, इतने आश्रय होते, तो फिर किसी को कौन सा होगा, किसी को कौन सा होगा, ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल गति नाम का उदयिक भाव है, तो किसी को मनुष्य गति का है, किसी को नर गति का है, किसी को देव गति का, तो वो पलटने से वो भंग हो जाते अलग अलग, मूल संख्या उतनी ही क्यों ना हो पर ये भावों के बदलने से जो भंग पड़ते हैं, ये देवलाली में बहुत सारे भंग आपको सुनने को मिलेंगे, हाँ, आश्रमों के भी और 5 भावों के भी, कंटा लावे तब तक सुनना,
पर कंटा लावे तो निकल जाना,
भाग नहीं जाना आपको लगेगा इतना आश्रय होते हैं हमको कभी पता ही नहीं था,
पता होता तो नहीं करते,
नहीं नहीं पता होता तो नहीं करते, ये आश्रय है दुख रूप है यही, इसी का पता नहीं है, है ना, उसके साथ एकत्व मानकर बैठा, बस इतनी बात है, उससे भेद करना ये मूल चीज है, ये जिनागम का रहस्य है, क्योंकि शरीर से जुदा तो सब कुछ कोई भी कहते, उसके लिए कोई किसी धर्म की जरूरत नहीं है, कोई भी साधारण आदमी कहते ना, अभी तो चाल बोल रहा था, अभी जीव निकल गया, कहता है ना प्राण इसके चले गए, उसका अर्थ क्या, यहाँ कोई ऐसी चीज थी वो चली गई है, वो शरीर से जुदी थी, ये तो कोई भी कह सकता है, परंतु ये तो राग से जुदापना है, मैं तो ज्ञायक हूं और ये अपने में ही उठने वाले राग कहो या आश्रय भाव कहो, मोह राग द्वेष के परिणाम, वो अपने से जुदे है अपनी पर्याय में, ये अपना ही परिणमन है, परंतु मेरा जो मूल स्वभाव है उससे ये जुदे है, ये नक्की करना है। तो कहते हैं भंग ने बहिर्बधु सर्वज्ञ सिवाय बीजो कोई प्रत्यक्ष न जाने, ते सर्वज्ञ शक्ति ज न माने, अन्य मति जो है उसकी बात चल रही है, जीवनो स्वभाव ज ज्ञ छे, ज्ञ स्वभाव ते स्वभाववान, ज्ञ स्वभाव स्वभाववान नो छे, स्वभाववान कौन है, मैं स्वयं द्रव्य, हमने सर्वज्ञ की महत्ता आती है क्यों, वो सर्व क्या क्या है उसकी महत्ता आती है, तो सर्व क्या क्या है उसकी महत्ता आती है कि वो ज्ञान की महत्ता आती है, हम लंबी चौड़ी लिस्ट तो सर्व की बताते हैं ना, क्योंकि अभी समझाए कैसे, शुरुआत में तो ऐसा ही समझाया जाएगा, परंतु वहां वो ज्ञान की महत्ता है कि ज्ञान अपनी एक समय की पर्याय ज्ञान रूप से रहते हुए अपनी स्वयं की शक्ति से सबको जानने रूप परिणमित होता है। वहां तो वो तो ज्ञान की महत्ता हो रही, सर्व की महत्ता नहीं हो रही है। सर्वज्ञ एक शब्द है ना, तो हमें महिमा ज्ञ की आ रही है कि सर्व की आ रही है? ये कह रहे यहाँ पर ज्ञ स्वभाव स्वभावान्नो छे, इटले ज्ञ मां अपूर्णता ने विपरीतता न हुए। क्या कहते हैं? स्वभाव है ना, तो स्वभाव है हमने देखा था वो परिपूर्ण होता है। पांच बातें याद है क्या? भूल गए? हाँ बोलो। स्वतः सिद्ध, अनादि अनंत, हाँ परिपूर्ण, फिर अमर्यादित, स्वयं सिद्ध हो गया, असीम असीम अमर्यादित। तो ये जो स्वभाव है, तो कहते क्या कहा यहाँ पर, एमा अपूर्णता न हो, विपरीतता भी नहीं। जो विपरीत जाने उसको ज्ञान कैसे कहेंगे? ज्ञान जैसा है उसको वैसा जाने तो उसको हम ज्ञान कहेंगे। है कुछ चीज अलग और ज्ञान अलग से जान रहा है, उसको सही कौन कहेगा? उसको अज्ञान कहेंगे, उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे। यहाँ क्या कहे, इटले ज्ञमा अपूर्णता ने विपरीतता न होए। अपूर्णता न होए यानी क्या है? परिपूर्ण होना चाहिए। विपरीतता न होने वो तो सही सही होना चाहिए। ते ज्ञ स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव छे। देखो एक सिंपल न्याय बताया कि जो ज्ञ है जानना है उसमें अपूर्णता नहीं हो सकती, विपरीतता नहीं हो सकती। अपूर्णता नहीं तो क्या होगा? परिपूर्णता होनी चाहिए। और विपरीतता नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना चाहिए,
सम्यक रीति से। सम्यक रीति से,
हाँ सही रीति से, सम्यक रीति से। तो इसको कह के इसीलिए ज्ञ स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव है। देखो हमारे में हमारा भी ज्ञ स्वभाव है कि नहीं, जो कुछ जान रहे कितना जान रहे उसकी बात छोड़ो, पर्याय में जानना तो हो रहा है ना, क्योंकि हमारे हमारे में कुछ जानना हो रहा है। कोई बातें समझ में नहीं भी आ रही है वो कौन समझता है? हम समझते, यानी ज्ञान निर्णय कर, यानी ज्ञान की पर्याय चल रही है, हमारे हर समय ख्याल में आ रहा है। तो जो ज्ञान की पर्याय है वो काहे से निकली? तो ज्ञान गुण से। तो गुण है तो उसमें तो परिपूर्ण सामर्थ्य होने चाहिए, यानी भले हमारी पर्याय अधूरी है परंतु उस अधूरी पर्याय के द्वारा हम गुण को पकड़ते हैं, और गुण जहां है उसका पूरा स्वभाव पड़ा है, तो हमको तो स्वभाव का लक्ष्य करना है। यही कह रहे हैं कि ज्ञ स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव, यानी मैं भी सर्वज्ञ स्वभाव ही हूं। क्यों? मेरे में ज्ञ स्वभाव है, अभी पर्याय में वो प्रकट नहीं है। पर्याय में पन ज्ञान हो रहे तो हमारा प्रकट लक्षण है, इसलिए ज्ञान को इतना मुख्य क्यों दिया? क्योंकि वो जीव को प्रकट लक्षण है। अन्य गुणों का ऐसा प्रकट लक्षण हो ही ऐसा नहीं है, जैसे प्रतीति कैसी हो रही है या कैसा, तो वो तो प्रकट नहीं है। ज्ञान के द्वारा बाकी सभी गुणों का कार्य भी हम जानते हैं, इसलिए ज्ञान को प्रकट कह दिया। तो उसे ज्ञान पर्याय के द्वारा हम ज्ञान गुण का निर्णय करें। आपने कहा ना अनुमान से भी पहले नक्की तो कर सकते हैं यहाँ पर। लोको आत्मा आत्मा ने वाती तो वातु तो बहु करे, यानी सभी संप्रदाय वाले आत्मा की बात करते हैं। आज आयु छे ये यही छे नती रजनीश नु आयु छे पुस्तक भेट आयु छे कोटा माती आम जो छे जाने ऊपर क्या एक भगवान हसे। कोई ऐसे ऊपर देखते हुए कोई चित्र होगा उसमें फोटो, ये सिद्ध भगवान ने नथी जोता हो हाथ आम करी ने, एक हाथ में घड़ियाल हती ए वक्ते फोटो पाड़ी लीधो हसे। एनु कोरु ज्ञान देखानु के आत्मा नु क्षेत्र जेटला मा छे एनी एने खबर नथी, अने आत्माना क्षेत्र मा एना क्षेत्र मा जेटला केटला गुणों छे एनी एने खबर नथी। एथी आम बाहर क्षेत्र मा गणावे छे एटले एना गुणों पण बाहर क्षेत्र मा गणे छे। तेथी अलिंग ग्रहण मा कह्युं छे ने अमेहनाकार पाखंडियों ने प्रसिद्ध साधन रूप आकार वालो लोक व्याप्ति वालो नथी। शुं आचार्यो पण स्पष्टीकरण कर्यो छे बाहर लोकोने एवुं लागे सर्वव्यापक छे। ओहो हो कहते ने सर्वव्यापक है भगवान, सर्वव्यापक है। एना गुणों नुं क्षेत्र आम लांबू छे, ए गुण ने क्षेत्र एवा भेद ज क्या माने छे? हाँ, यानी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसे भेद भी वहां में उसमें कहां पर पाए जाते हैं। ये रजनीश भी तो वो तो था तो तारणपंथी जैन, वो जबलपुर में वो फिलोसॉफी का प्रोफेसर था, फिर वहां से उसको कुछ प्रसिद्धि मिल गई तो डिरेलमेंट हो गई पूरी। हाँ, अही कहे छे के जेम चंद्रकांत मणि पत्थर पृथ्वी छे, सॉलिड है ना, पृथ्वी है, छता पानी उत्पन्न थाय छे, उसमें से पानी झरता है तो उसको तो पिघल कर उसका पानी बनता है, अने ते पानी माथी पाछू मोती उपजे छे, पर्याय बदले छे ने, आहा हा, अथवा अग्नि माथी काजल रूप पृथ्वी काय निपजता लेव, ठीक, अग्नि माथी आ काजल निकले छे ने, एक काजल कैसे बनाते मालूम है, वो तो दिया जलाते हैं ऊपर ऐसे वो तांबे का ये सब रखते हैं, उसकी पूरी वो तो इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें वो जो कुछ विशिष्ट एक ऐसा हाँ देखो तो, अथवा अग्निमाथी काजल रूप पृथ्वीकाय, पृथ्वीकाय क्यों कहा, वो सॉलिड होता है ना इसलिए उसको पृथ्वीकाय कहा, यहाँ पृथ्वीकाय कहने से सॉलिड चीज बतानी थी उनको। अग्निमाथी आ काजल निकले छे ने ए पृथ्वी छे, तावड़ी मां काजल नथी निकलतु, चारे गुणों प्रकट थता जोवामां आवे छे, एने जो सॉलिड चीज है कहो पृथ्वी जो कहा यहाँ पर, उसमें चारों ही गुण प्रकट पाए जाते हैं, देखने में आते हैं। अ कहे छे, यहां तीन उदाहरण दिए थे, चंद्रकांत का, अरणी का और जव का, वो तीनों कैसे है, सॉलिड है जिसको पृथ्वी कहेंगे, और फिर चंद्रकांत में से पानी निकलता है, अरणी यानी वो पत्थर होते हैं ना अग्नि के पत्थर चकमक, तो उसमें से अग्नि उत्पन्न होती है, और जव जो है अनाज जो है उसमें से गैस यानी जो वायु उत्पन्न होती है। देखो तो कहते चंद्रकांत ने यानी चंद्रकांत मणि, अरणी ने अने जव ने जे पुद्गलो उत्पन्न करे छे तेज पुद्गलो वड़े, यानी ये क्या है, पुद्गल के स्कंद है, परमाणु से वो उत्पन्न हुए। अभी जो चंद्रकांत मणि है उसी का वो पानी रूप पिघल गया, पुद्गल के परमाणु वही के वही रहे, उन्हीं पर्यायों की अवस्था पलट गई, वही सॉलिड रूप थे वो लिक्विड रूप हो गए, द्रव रूप हो गए। तेज पुद्गलो बड़े जेने गंध अव्यक्त छे वा पानी ने, चंद्रकांत ये तो सॉलिड है ना, पृथ्वी है, उसमें चारों गुण प्रकट थे, उसमें से पानी हुआ तो उसमें तीन ही गुण प्रकट है, पहले था पुद्गल भी वही था, इस गुण है तो वो तो अनादि अनंत होने चाहिए, परंतु अभी व्यक्त नहीं रहा, पानी ने उत्पत्ति थाय छे, जोयु शुक्रदेव के चंद्रकांत मां बधा गुणों छे, बधा गुणे ने कौन से, स्पर्श रस गंध वर्ण, और वो प्रकट भी हो है, व्यक्त भी है उसकी अवस्था, पण एनाथी उत्पन्न थयु एवा पानी मां गंध अव्यक्त छे, हा हा हा, जेने गंध अव्यक्त छे एवा अग्नि नी उत्पत्ति अरणी माथी थाय छे, अरणी ने वो तो पत्थर जो है, अरणी तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाली छे, क्योंकि जो पृथ्वी जो बताया है उसमें चारों ही है, चारे गुण वाली छे, छता जेने गंध तथा रस अव्यक्त छे एवा अग्नि ने, उसमें से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि में तो दो गुण अव्यक्त है, उसमें तो चारों व्यक्त थे, उत्पत्ति थाय छे, समझाय छे कयामा, आमा ध्यान देवा जेवू आ छे, यानी जो पहले पृथ्वी थे वो किसी में से पानी हुआ, किसी में से अग्नि हुआ, किसी में से वायु हुआ। अभी तीसरा पॉइंट, जेने गंध रस तथा वर्ण अव्यक्त छे एवा उदर वायु नी उत्पत्ति, पेट में जो वायु होता है ना उदर वायु, जव माथी थती जोवामा आवे छे, जव माथी वायु उत्पन्न थाय छे ने तो पृथ्वी माथी थयु ने कई, आ हा हा, वही क्यांक कोई पर्याय मा कोई गुण नो कादाचित्क, यानी कभी कभी,
कदाचित परिणाम नी विचित्रता ने कारणे थतु व्यक्तपणु के अव्यक्तपणु। अभी पुद्गल वही के वही है, उन्हीं के ये जो कोई अन्य अन्य पर्याय में किसी का व्यक्त होता है, कोई अव्यक्त हो जाते हैं, फिर व्यक्त हो जाते हैं। नित्य द्रव्य स्वभावनो प्रतिघात करतु नथी। अभी ये चंद्रकांत मणि पृथ्वी रूप है और उसका पानी हुआ है तो गंध अव्यक्त में चला गया, परंतु उसके गुणों का प्रतिघात यानी गुण नष्ट नहीं होते। नित्य द्रव्य स्वभाव, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण उसके लिए पुद्गल के लिए नित्य द्रव्य स्वभाव है, उसका घात नहीं हो सकता। एटले के कोई वक्ते प्रकट देखाय के न देखाय एथी एना गुणनी नित्यतानो विरोध थतो नथी, ये कह रहे। हमें प्रश्न है उसमें गुण है कि नहीं है, तो कहते उसमें गुण तो है, वो पुद्गल है, तो कोई उसका व्यक्त है, प्रकट दिखाई देता है या नहीं भी दिखाई देता है, परंतु गुण हमेशा ही नित्य रहेंगे। समझाणु काय, आ व्यापारी मानस ने जरिए आकरू पड़े। हम तो ये भी देखते हैं गुण का द्रव्य का कैसा संबंध है, नित्यता जाती है। यहाँ तो अलग पद्धति से उसको तो जिसको भी नहीं उदाहरण दे के समझा रहे हैं क्यों नित्य है, क्योंकि उसके अवसर एक तो सॉलिड था उसमें से लिक्विड हो गया, फिर भी गुण तो वही के वही कायम रहे। उसमें भी कोई व्यक्त थे वो अव्यक्त हो गए, फिर भी गुण हमेशा कायम रहेंगे, ये कह रहे। आ व्यापारी मानस ने जरी आकरू पड़े, वकील देवाने बड़ी ठीक लगे, क्योंकि उसमें जो कुछ न्याय होते हैं ना, हाँ सिद्ध करना है प्रूफ दे के। कहे छे के जेम क्या केटले कोई पर्याय मां कोई गुण नो कादाचित परिणाम नी विचित्रता ने कारण, गुण तो हमेशा है परंतु उसका जो परिणाम है उसमें अनेकता विविधता है। विचित्रता का अर्थ क्या, अनेकपना। पर्याय मां व्यक्तपणु के अव्यक्तपणु हो ए नित्य द्रव्य स्वभावनो प्रतिघात करतु नथी, प्रतिघात यानी उसका नाश नहीं करता। एटले के व्यक्त न होए माटे त्या नित्य गुण नथी, व्यक्त पर्याय न होए माटे त्या नित्य गुण नथी एम नथी। ख्याल में एम नथी क्या, यानी वो व्यक्त पर्याय नहीं भी है फिर भी गुण हमेशा ही पाए जाएंगे। नित्य गुण ने ये प्रतिघात करतु नथी। आहा न्याय नो विषय मुक्यो छे, आहा हा न्याय समझते ना वो लॉजिक। हाँ शू कहूं ये क्या है, कोई पर्याय मां एटले जे मां पानी मां गंध न देखाय एम कोई गुण नो कादाचित का परिणाम नी विचित्रता ने कारणे परिणमवानी विविधता ने लईने व्यक्तपणु के अव्यक्तपणु व्यक्त हो के अव्यक्त हो एथी नित्य द्रव्य स्वभावनो प्रतिघात करतु नथी, एना गुणमां नित्यता नथी एम नहीं। एनी पर्याय क्यांक व्यक्त के अव्यक्त हो, व्यक्त पर्याय नथी त्यां गुण नथी एम पण नथी, अने व्यक्त थाय त्यां गुण छे एम पण नथी। गुण तो नित्य छे, पर्याय प्रकट हो के पर्याय प्रकट न हो, प्रकट की अपेक्षा से वहां पर्याय भी है, गुण तो है पर्याय भी है, परंतु हमें इंद्रियों के द्वारा वो व्यक्त जानने में नहीं आ रहे। इस तरह से पानी मां बाह्यती प्रकट गंध आदि न देखाए छतापन अंदर गंध गुण नित्य गुण जे छे एने विरोध करतु नथी, यानी गुण है पर उसका परिणमन नहीं होता, ऐसा भी मत मानना। क्यों, गुण है तो उसका हमेशा ही परिणमन नित्य होगा, क्यों होगा नित्य बोलेंगे आप। यहाँ क्या कि वो गंध गुण का परिणमन नहीं होगा ना यहाँ पर,
नहीं होगा।
क्यों होगा,
द्रव्य उसे ही कहते हैं।
क्या कहते हैं,
द्रव्य। हाँ हाँ
हाँ ये कारण है द्रव्यत्व गुण है तो निरंतर परिणमन हो रहा है, प्रत्येक गुण का निरंतर परिणमन हो रहा है। यहाँ सारे सिद्धांत प्रवेशिका वाले हैं तैयार, लोग बैठे हैं, फटाफट याद आता है उनको। सर ने ठोक बजा कर तैयार किया है सब। यहाँ क्या क्या द्रव्य सभा यहाँ तक चल रहे थे ना,
नीचे से दूसरी लाइन लास्ट पैराग्राफ के ऊपर। भाई आ तो प्रवचन सार छे।
गुण तो नित्य छे। हाँ चौथी लाइन, गुण नथी एम पण नथी अने व्यक्त थते गुण छे एम पण नथी। गुण तो नित्य छे, पर्याय प्रकट हो के पर्याय प्रकट न हो। पानी मा बाह्यती प्रगट गंध आदि न देखाय छता पण अंदर गंध गुण नित्य गुण जे छे एने विरोध करतु नथी। हाँ यहाँ तक भाई आ तो प्रवचन सार छे। 126 गाथा सुधी द्रव्य सामान्य नु वर्णन थई गयु। 127 गाथा थी आ द्रव्य विशेष नु वर्णन छे, क्योंकि वो विशेष गुणों के द्वारा चिन्ह उसको लिंग कहा था, उसके द्वारा ये पहचानने की बात चल रही है। अर्थात अनित्य परिणाम ने लीधे थती गुणनी प्रगटता ने अप्रगटता नित्य द्रव्य स्वभाव साथे काई विरोध पामती नथी। यानी जो अनित्य परिणाम है, पर्याय अनित्य है, और उसमें गुण में जो है शक्ति वो प्रकट या अप्रकट यहाँ होगी। पर्याय में पर्याय तो हो ही रही है, पर प्रकट किस अपेक्षा से, इंद्रियों के द्वारा जानने की अपेक्षा से कहा। वैसे उसमें पर्याय भी है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान उसके पर्याय तो जान ही रहे, पर्याय तो हो ही रही है। गुण है तो वहां पर्याय होनी भी चाहिए। कहो आगी बात विजय क्या छे। एक शब्द ने पर्याय सिद्ध करवा केटला न्याय आप्या। क्या कहते हैं, शब्द पर्याय है ये नक्की कर रहे थे। वो पर्याय है तो वहां कोई ध्रुव नित्य चीज होनी ही चाहिए। जैसे है ना, गुरुदेव बहुत बार बताते हैं, हमें तो क्या पता कि श्वेतांबर लोग व्यवहार काल को मानते हैं, पर द्रव्य काल को नहीं मानते, निश्चय काल को। तो उसका अर्थ क्या है, पर्याय है अनित्य है तो वहां कोई तो नित्य चीज होनी ही चाहिए। एक है ना, शब्द ने पर्याय सिद्ध करवा केटला न्याय आप्या। के चंद्रकांत मणि पत्थर छे छता एमाथी पाणी उत्पन्न थाय छे। उत्पन्न थवुं एटले पत्थरमांथी पत्थर ज उत्पन्न थाय एवुं काई नथी। एम आत्मामां के पुद्गलमां शब्द पर्याय उत्पन्न करवानो कोई गुण नथी, अर्थात कोई एक गुण नथी, छता आखा पुद्गलना बधा गुणो शब्द उत्पन्न करवा थवामां कारण छे। आ प्रश्न थाय छे ने भाई, घणी वार थाय छे, अंदर शब्दनी पर्यायनो गुण कोण, कारण के गुण विनानी पर्याय होय नहीं, एम घणाने प्रश्न थाय छे। ई एक गुण नहीं, समुच्चय बधा गुण भेगा छे। प्रश्नकार पूछे बीजी पर्यायनो एवो दाखलो खरो, एटले आज दाखलो छे। फिर प्रश्न कहता है भवी अभवी मां, समाधान भवी अभवी ई जुदु एनी साथे लागू न थाय। प्रश्न शब्द पर्याय व्यंजन पर्याय कहवाय, व्यंजन पर्याय आयु ने अंदर संस्कृत में आयु, तथा अयम शब्द पुद्गलस्य विभाव पर्यायो, ई विभाव छे, विभाव माथे आयु ई बतायु हतु, पहला कहयु हतु। आ बाजु 262 पाना उपर छे, यथा जीवस्य नरनारकादि विभाव पर्यायः तथा अयम शब्द पुद्गलस्य विभाव पर्यायो। द्रव्य गुण ने पर्यायना यथार्थ भान विना बधा गोटा उठ्या छे, है ना, बाकी सब गड़बड़ चल रही है। आनाथी आ थाय ने आनाथी आ थाय ने आनाथी थाय, माटे शब्द पुद्गलनो जो सरवाळो आ लेवो छे ने। अभी तात्पर्य बता रहे, पहले तो डिटेल में बता चुके, अब फिर से दोबारा कि माटे शब्द पुद्गल नो पर्याय ज हो, यानी शब्द ये पुद्गलों की पर्याय है ये नक्की हो गया, सिद्ध कर दिया उन्होंने। जीव मा अनंत आनंद पर्याय मा प्रकट न हो।
सर्वाणो का अर्थ क्या लेना,
सर्वाणो ने उसका तो तात्पर्य, तात्पर्य निष्कर्ष
सारांश।
हाँ सार, सर्वाणु का अर्थ क्या, सारांश तात्पर्य होता है ना।
यानी Moral of the story.
Moral of the story. देखो क्या कहते हैं, जीव में अनंत आनंद पर्याय में प्रकट न होए, एथी एनो आनंद गुण नथी एम नथी। देखो कहां से कहां ले गए, पुद्गल का कोई गुण ही वो तो पर्याय में वो व्यक्त हो या न हो, परंतु गुण तो हमेशा होंगे, स्पर्श भी रस भी गंध भी वर्ण भी, वो उन्होंने अनेक दृष्टांत देके समझाया है। अब ऐसा ही हमारे आप में आनंद पर्याय में प्रकट न होए, एथी एनो आनंद गुण नथी एम नहीं। वो खाली गुण नहीं लिया, वो अनंत आनंद लिया था, चतुष्टय लिए ना। तो हम आप सभी में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख वीर्य, ये क्या है, वो गुण बताए हैं। तो पर्याय में वो प्रकट हो या व्यक्त हो न हो, तो कहते वो कैसे, तो हरेक में है। आनंद नी पर्याय बाह्य मां प्रकट नथी, एने ठेकाने अहीं संसार नू दुख छे। ए आनंद नो पर्याय बाह्य नथी अने प्रकट नथी, माटे आनंद गुण नो निषेध करे छे के आनंद गुण नथी, तो कहते एम नथी। इने परमाणु के प्रकट अप्रकट से उन्होंने जीव की बात बताई। हो गया समय, रुकेंगे यहीं पर। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नम सदा देत हो। वीरेश भाई।